श्री परमात्म ने नमः। गीता का सार अध्याय 10 श्लोक 39, दंड आदि विभूतियों का कथन। क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण खुद को सभी प्राणियों का उद्गम क्यों कहते हैं? क्या हम सब वास्तव में उसी एक दिव्य स्रोत से आए हैं? जानिए आज के श्लोक में इस ब्रह्मा रहस्य का खुलासा। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं तो समझ लीजिए यह कोई संयोग नहीं बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया कि वे नीति, मौन और ज्ञान में प्रकट होते हैं। आज जानिए कैसे वे हर एक जीव के उद्गम ओरिजिन है। टुडेज श्लोक चैप्टर 10 श्लोक 39। यच्चापि सर्वभूताना बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यन् मया भूतं चराचरम्। टुडेज इंट्रोडक्शन लर्निंग भावार्थ मीनिंग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही समस्त प्राणियों का बीज मूल कारण हूं। चर और अचर कोई भी वस्तु मुझसे अलग नहीं है। सीख क्या मिलती है? हम सब में भगवान का अंश है। कोई वस्तु, कोई जीव भगवान से रहित नहीं है। हर जीवन रूप की शुरुआत का मूल परमात्मा है। भक्ति, सेवा और आत्मचिंतन से ही जुड़ सकते हैं उस दिव्यता से। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजक शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभि ध्यान गम्यं वंदे विष्णो भव भयहरं सर्व लोकैक नाथम्। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पदक्रमोपनिष्ते गायन्ति यम सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चानूर मर्दनम् देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्।
सर्वरूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का कथन। श्लोक 39। यच्चापि सर्वभूताना बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। उच्चारण की विधि यत् च अपि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम् अर्जुन न तत् अस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। 39। शब्दार्थ च अर्थात् और अर्जुन अर्थात् हे अर्जुन, यत अर्थात जो, सर्वभूतानाम अर्थात सब भूतों की, बीजम अर्थात उत्पत्ति का कारण है, तत अर्थात वह, अपि अर्थात भी, अहम अर्थात मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा, तत अर्थात वह, चराचरम अर्थात चर और अचर, कोई भी, भूतम अर्थात भूत, न अर्थात नहीं, अस्ति अर्थात है, यत अर्थात जो, मया अर्थात मुझसे, विना अर्थात रहित, स्यात अर्थात हो। अर्थ और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है, वह भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। 39 व्याख्या। भगवान ने 20वें श्लोक से 39वें श्लोक तक अपनी कुल 82 विभूतियों का वर्णन किया है, जैसे 20वें श्लोक में 4, 21वें श्लोक में 4, 22वें श्लोक में 4, 23वें श्लोक में 4, 24वें श्लोक में 3, 25वें श्लोक में 4, 26वें श्लोक में 4, 27वें श्लोक में 3, 28वें श्लोक में 4, 29वें श्लोक में 4, 30वें श्लोक में 4, 31वें श्लोक में 4, 32वें श्लोक में 5, 33वें श्लोक में 4, 34वें श्लोक में 9, 35वें श्लोक में 4, 36वें श्लोक में 5, 37वें श्लोक में 4, 38वें श्लोक में 4 और 39वें श्लोक में एक विभूति का वर्णन किया है। यच्चापि सर्वभूताना बीजं तदहमर्जुन, यहां भगवान समस्त विभूतियों का सार बताते हैं कि सबका बीज अर्थात कारण मैं ही हूं। बीज कहने का तात्पर्य है कि इस संसार का निमित्त कारण भी मैं हूं और उपादान कारण भी मैं हूं, अर्थात संसार को बनाने वाला भी मैं हूं और संसार रूप से बनने वाला भी मैं हूं। भगवान ने 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में अपने को सनातन बीज, 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अव्यय बीज और यहां केवल बीज बताया है। इसका तात्पर्य है कि मैं ज्यों का त्यों रहता हुआ ही संसार रूप से प्रकट हो जाता हूं और संसार रूप से प्रकट होने पर भी मैं उसमें ज्यों का त्यों व्यापक रहता हूं। न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम, संसार में जड़चेतन, स्थावर जंगम, चराचर आदि जो कुछ भी देखने में आता है वह सब मेरे बिना नहीं हो सकता, सब मेरे से ही होते हैं, अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूं। इस वास्तविक मूल तत्व को जानकर साधक की इंद्रिया, मन, बुद्धि जहाँ ही जाए अथवा मन बुद्धि में संसार की जो कुछ बात याद आए उन सबको भगवान का ही स्वरूप माने। ऐसा मानने से साधक को भगवान का ही चिंतन होगा, दूसरे का नहीं, क्योंकि तत्व से भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। यहाँ भगवान ने कहा है कि मेरे सिवाय चराचर कुछ नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही हूं, और 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा है कि सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के सिवाय कुछ नहीं है, अर्थात सब गुणों का ही कार्य है। इस भेद का तात्पर्य है कि यहां भक्ति योग का प्रकरण है। इस प्रकरण में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि मैं आपका कहां कहां चिंतन करूं, इसलिए उत्तर में भगवान ने कहा कि तेरे मन में जिस जिसका चिंतन होता है वह सब मैं ही हूं। परंतु वहां 18:40 में सांख्य योग का प्रकरण है। सांख्य योग में प्रकृति और पुरुष दोनों के विवेक की तथा प्रकृति से संबंध विच्छेद करने की प्रधानता है। प्रकृति का कार्य होने से मात्र सृष्टि त्रिगुणमयी है, इसलिए वहां तीनों गुणों से रहित कोई नहीं है ऐसा कहा गया है। एक इदम गुणमयम विद्धि त्रिविधम माया कृतम, श्रीमद्भा 0:11:28। 7 विशेष बात। भगवान ने अहमात्मा गुड़ाकेश 10:20 से लेकर बीजं तदहमर्जुन 10:39 तक जो 82 विभूतियां कही हैं उनका तात्पर्य छोटा बड़ा उत्तम मध्यमदम बताने में नहीं है, प्रत्युत यह बताने में है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि सामने आए तो उसमें भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। 2 यच्च किंचिन जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते पीवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, महानारायण उपनिषद 11:6। यह जो कुछ भी जगत देखने या सुनने में आता है इस सब को बाहर और भीतर से व्याप्त करके भगवान नारायण स्थित है। कारण कि मूल में अर्जुन का प्रश्न यही था कि आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं और किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। 17वां श्लोक। उस प्रश्न के उत्तर में चिंतन करने के लिए ही भगवान ने अपनी विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन किया है। जैसे यहां गीता में भगवान ने अर्जुन से अपनी विभूतियां कही हैं, ऐसे ही श्रीमद्भागवत में 11वें स्कंध के 16वें अध्याय में भगवान ने उद्धव जी से अपनी विभूतियां कही हैं। गीता में कही कुछ विभूतियां भागवत में नहीं आई हैं और भागवत में कही कुछ विभूतियां गीता में नहीं आई हैं। गीता और भागवत में कही गई कुछ विभूतियों में तो समानता है, पर कुछ विभूतियों में दोनों जगह अलग अलग बात आई है। जैसे गीता में भगवान ने पुरोहितों में बृहस्पति को अपनी विभूति बताया है, पुरोधसा च मुख्यम अविद्धि पार्थ बृहस्पतिम 10:24, और भागवत में भगवान ने पुरोहितों में वशिष्ठ जी को अपनी विभूति बताया है, पुरोधसा वशिष्ठोहम 11:16-22। अब शंका यह होती है कि गीता और भागवत की विभूतियों का वक्ता एक होने पर भी दोनों में एक समान बात क्यों नहीं मिलती। इसका समाधान यह है कि वास्तव में विभूतियां कहने में भगवान का तात्पर्य किसी वस्तु व्यक्ति आदि की महत्ता बताने में नहीं है, प्रत्युत अपना चिंतन कराने में है। अतः गीता और भागवत दोनों ही जगह कही हुई विभूतियों में भगवान का चिंतन करना ही मुख्य है। इस दृष्टि से जहां जहां विशेषता दिखाई दे वहां वहां वस्तु व्यक्ति आदि की विशेषता न देखकर केवल भगवान की ही विशेषता देखनी चाहिए और भगवान की ही तरफ वृत्ति जानी चाहिए। परिशिष्ट भाव संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के चार खाने स्थान ए एक जरायुज जेर के साथ पैदा होने वाले मनुष्य गाय मैंस भेड़ बकरी आदि दो अंडजंडे से पैदा होने वाले पक्षी सांप गिलहरी छिपकली आदि तीन उद्भिज्ज पृथ्वी का भेदन करके ऊपर की तरफ निकलने वाले वृक्ष लता दूब घास अनाज आदि और चार स्वेदज पसीने से पैदा होने वाले जू लीक आदि तथा वर्षा में जमीन से पैदा होने वाले केंचुए आदि जीव। इन चार स्थानों से 84 लाख योनियां पैदा होती हैं। इन योनियों में दो तरह के जीव होते हैं, स्थावर और जंगम। वृक्ष लता दूब घास आदि एक ही जगह रहने वाले जीव स्थावर हैं और मनुष्य पशु पक्षी आदि चलने फिरने वाले जीव जंगम हैं। इन जीवों में भी कोई जल में रहने वाले हैं, कोई आकाश में रहने वाले हैं और कोई भूमि पर रहने वाले हैं। इन 84 लाख योनियों के सिवाय देवता पितर गंधर्व भूत प्रेत पिशाच ब्रह्मराक्षस पूतना बालग्रह आदि कई योनियां हैं। इन संपूर्ण योनियों के बीज अर्थात मूल कारण भगवान हैं। तात्पर्य है कि अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं, पर उन सबका बीज एक ही है। इसलिए सब रूपों में एक भगवान ही हैं, वासुदेवः सर्वम्। जैसे बीज से खेती होती है, ऐसे ही एक भगवान से यह संपूर्ण संसार हुआ है। जिस प्रकार बाजरी से बाजरी ही पैदा होती है, गेहूं से गेहूं ही होता है, पशु से पशु ही होते हैं, मनुष्य से मनुष्य ही होते हैं, इसी प्रकार भगवान से भगवान ही होते हैं, अर्थात संसार रूप से भगवान ही प्रकट होते हैं। जैसे सोने से बने गहने सोना रूप ही होते हैं, लोहे से बने औजार लोहा रूप ही होते हैं, मिट्टी से बने बर्तन मिट्टी रूप ही होते हैं, रुई से बने वस्त्र रुई रूप ही होते हैं, ऐसे ही भगवान से होने वाला संसार भी भगवद रूप ही है। लौकिक बीज से तो एक ही प्रकार की खेती पैदा होती है। जैसे गेहूं के बीज से गेहूं ही पैदा होता है, ऐसा नहीं होता कि एक ही बीज से गेहूं भी पैदा हो जाए, बाजरी भी पैदा हो जाए, मोठ भी पैदा हो जाए, मूंग भी पैदा हो जाए। सबके बीज अलग अलग होते हैं, परंतु भगवान रूपी बीज इतना विलक्षण बीज है कि उस एक ही बीज से अनेक प्रकार की सृष्टि पैदा हो जाती है। गीता 14वें अध्याय का 4वां श्लोक और सब प्रकार की सृष्टि पैदा होने पर भी उसमें कोई विकृति नहीं आती, वह ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि वह बीज अव्यय है। गीता 9वें अध्याय का 18वां श्लोक और सनातन है। गीता 7वें अध्याय का 10वां श्लोक। संबंधब आगे के श्लोक में भगवान अपनी दिव्य विभूतियों के कथन का उपसंहार करते हैं।
आज की जीवन समस्या और समाधान। समस्या: हम खुद को तुच्छ समझते हैं, दूसरों में अच्छाई नहीं देख पाते, जीवन की शुरुआत और अंत से डरते हैं। समाधान: अपने अंदर ईश्वर को पहचानिए, सब में एक ही बीज भगवान है, यह भाव अपनाइए, जीवन का हर पल ईश्वर से जुड़ने का अवसर है। डर नहीं, श्रद्धा से जीवन जिए। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वे किसका बीज हैं? अव केवल देवताओं का, बी सभी चराचर जीवों का, सी केवल मनुष्यों का, डी केवल ज्ञानियों का। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है, सही उत्तर है बी सभी चराचर जीवों का। व्याख्या, श्लोक में स्पष्ट कहा गया है, सर्वभूताना बीजं तद्यहं, अर्थात मैं सभी जीवों का बीज हूँ, चाहे वो चर हो या अचर, यानी जो भी प्राणी वस्तु या चेतना इस ब्रह्मांड में विद्यमान है उसका मूल कारण स्वयं ईश्वर है। क्या आप जानते हैं भगवान की महिमा का कोई अंत नहीं? कल जानिए श्री कृष्ण कैसे कहते हैं कि वे अनंत है, श्लोक 40 में। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद्गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद्गीता हिंदी टीका के साथ मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचानी हिंदी टीका पैडछेड़ अनवाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभुजी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोले और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो तो वीडियो लाइक करें, दो लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता। हर घर